पृष्ठ संख्या 66, अध्याय 5। इसके बाद घटनाएं तेजी से घटने लगीं। सुषमा ने सबसे पहले अपने तबादले की बात चलाई। मैं तुम्हारी जिंदगी को कठिन नहीं बनाना चाहती। मैं तुम्हारा परेशान चेहरा नहीं देख सकती। अगर तुम्हारे मन पर इतना ही ज़्यादा बोझ है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं जैसे तैसे सह लूँगी। मैं तुम्हारा सुख देखना चाहती हूँ। तुम्हारे घर को तोड़ना नहीं चाहती, उसने महेंद्र के बालों को सहलाते हुए कहा और महेंद्र की आंखें चूम ली और मुंह छिपाकर रो दी। उस दिन घर लौटकर महेंद्र ने फिर बकझक की। प्रमिला के बार बार कुरेद कुरेद कर पूछने पर हाथ भी उठाया, पर चिल्लाने की बजाय प्रमिला केवल उसका हाथ पकड़कर एक ही वाक्य बोलती दोहराती गई। मेरा कसूर क्या है, मुझे यह तो बताओ। मैंने कौन सा कसूर किया है? मुझे मेरा कसूर तो बताते नहीं हो, झट से थप्पड़ दे मारते हो। उस रोज प्रमिला महेंद्र को रोकने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। न जाने उसके साहस को कैसे लकवा मार गया। सतवंत ने बार बार कहा था कि महेंद्र जब हाथ उठाए तो अकड़ जाना और उसे धमका देना कि तुम उसकी शिकायत कर दोगी, लेकिन उस दिन के बाद प्रमिला का तो जैसे आत्मविश्वास ही चूर चूर हो गया था। हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी कि महेंद्र कब क्या कर दे। पहले उसके जेबों में हाथ डाल डाल कर उसकी तलाशी लेती रहती थी, उसके खिलाफ सबूत तैयार करती रहती थी। घर आता तो सुषमा को लेकर उससे सवाल जवाब किया करती थी। अब आंखें फाड़े केवल ताकती रहने लगी थी। यंत्रवत घर के काम में लगी रहती, लेकिन उसके शरीर में एक प्रकार की जड़ता आ गई थी। महेंद्र घर पर भी होता तो संकित सी बनी रहती, झांक झांक कर उसके कमरे में देखती और चुपचाप लौट आती। एक रात दोनों अपने अपने बिस्तर में लेटे थे, कमरे में अंधेरा था, जब महेंद्र ने पृष्ठ संख्या 67 बहुत दिनों की चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुमने सुषमा के बारे में किसी से जिक्र तो नहीं किया? प्रमिला चुप रही। महेंद्र इस तरह का सवाल पूछेगा इसकी उसे आशा नहीं थी, वह छिपा नहीं सकी। मैंने सतवंत से कहा था, पर मैंने सुषमा का नाम नहीं लिया। कह चुकने के बाद वह इस इंतजार में रही कि महेंद्र की क्या प्रतिक्रिया होगी। वह शायद फिर से डांट डपट करने लगेगा, मगर महेंद्र चुप रहा, उसी तरह निश्चेष्ट सा लेटा रहा, मानो उसके और प्रमिला के बीच की कड़ी टूट गई हो और उसे जोड़ने की उसके मन में तनिक भी इच्छा ना हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा था दफ्तर में काम करती है और इन पर डोरे डालती रही है। यह कहकर प्रमिला चुप हो गई। फिर उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। प्रमिला सावधान हो गई। वह तेरी क्या लगती है जो तू उसके साथ इतनी घुल मिलकर बातें करती रही है? महेंद्र ने खींच कर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में खास कुछ नहीं कहा। औरतें आपस में बातें कर लेती हैं, बल्कि सतवंत तो तुम्हारी तारीफ करती थी। क्या कहती थी? मुझे उसकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। कहती थी तुम्हारे घर वाले ने तो तुम्हें आकर बता दिया है और लोग बताते भी नहीं। महेंद्र के दिल में गहरी टीस सी उठी। इस सारे बखेड़े की जड़ ही वह रात थी जब उसने भावावेश में प्रमिला को अपने दिल की बात बता दी थी। अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार बैठा था। पिटने के बारे में भी किसी से कहा है? नहीं, किसी से नहीं, किसी से भी नहीं, केवल सतवंत से। पर वह तो मेरी सहेली है। वह क्या कहती थी? वह कहती थी बहुत बुरी बात है। क्या उसी ने कहा था कि मेरी रुसवाई करने के लिए मेरे पीछे पीछे सड़क पर भागती आना? पृष्ठ संख्या 68। उसने कुछ नहीं कहा। महेंद्र चुप रहा। उसकी आंखों के सामने खिड़की के पर्दे के पीछे से मुखर्जी की पत्नी का झांकता चेहरा आ गया। क्षण भर के लिए उसका दिल धक से रह गया। आज नहीं तो कल यह मूर्ख औरत सुषमा के बारे में भी ढिंढोरा पीट आएगी। लेकिन ऐसा सोचकर उसे बहुत घबराहट नहीं हुई। उसके अंदर कुछ था जो उत्तरोत्तर कड़ा होता जा रहा था। उसकी धृष्टता बढ़ती जा रही थी, मानो उसे कोई चुनौती दी गई हो और उसने चुनौती मंजूर कर मुकाबला करने की ठान ली हो। इतने में प्रमिला की आवाज़ आई, मैं क्या करूं? तुम्हारे तो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा कौन है? एक सतवंत ही तो है। मेरा दिल भरा हुआ था, मैंने कह दिया। महेंद्र चुप रहा और करवट बदलकर लेट रहा। इसी बीच पप्पू भी परेशान करने लगा था। वह बैठा बैठा आंखें मिचकाने लगता और देर रात तक मिचकाता रहता। किसी किसी रात बिस्तर भी गीला कर देता और बुरी तरह से रोने लगता। डॉक्टर ने कहा नसों की कमजोरी के कारण है। डॉक्टर के सामने महेंद्र और प्रमिला दोनों बैठे थे और दोनों के बीच पप्पू टांगे झुलाता हुआ बैठा था। माँ बार बार उसका हाथ थाम लेती और वह बार बार उसका हाथ झटक देता। बड़ा जहीन और नाजुक बच्चा जान पड़ता है, डॉक्टर ने कहा। फिर पति पत्नी की ओर देखकर बोला, आजकल बच्चे ज़्यादा जहीन होते हैं क्योंकि माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। फिर उसने बच्चे की जीभ देखी और पेट देखा और छाती टटोल टटोल कर देखी और पप्पू सारा वक्त आंखें मिचकाता रहा। यह अंधेरे से भी बहुत डरने लगा है, पहले नहीं डरता था, प्रमिला ने कहा। बड़ी नाजुक तबीयत का बच्चा है, कलाकार बनेगा, डॉक्टर ने पप्पू का गाल थपथपाते हुए कहा। ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, और उसने कागज़ पर एक टॉनिक लिख दिया। जरा इसे मजबूत बनाइए, खाते पीते परिवारों के बच्चे कोमल वृत्ति के बने रह जाते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है। माँ बाप को चाहिए कि उन्हें कड़ा बनाया करें। पृष्ठ संख्या 69। और गले में से स्टेथोस्कोप निकालकर मेज पर रखते हुए वह दूसरे मरीज की तरफ मुखातिब हो गया। घर लौटकर महेंद्र देर तक पप्पू के बारे में सोचता रहा। घर का यह वातावरण बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। जिसकी माँ घर की चार दीवारी के बाहर न देख सकती हो, वह क्या सीखेगा? घर में बू फैली रहती है, कहीं कोई तरतीब नहीं, करीना नहीं, जिधर देखो कचरा, जिधर देखो कचरा। दो दो पैसे का नमक मंगाती फिरती है। सारा वक्त पप्पू की नाक बहती रहती है और हाथों पर मैल जमी रहती है। एक बात को पकड़कर इसने कोहराम खड़ा कर रखा है। सभी औरतें घर का काम करती हैं, बच्चों की और घर वाले की देखभाल करती हैं, पर उनके दिमाग में धुंध नहीं छाई रहती। महेंद्र ने नज़र घुमाकर प्रमिला की ओर देखा, जो रसोई के काम से निबटने के बाद बैठक में कालीन पर ही लेटी बेसुध सी हो रही थी। प्रमिला का मुंह थोड़ा खुला हुआ था और लगता था नाक बंद है। सोए हुए भी वह मूर्ख लग रही थी। उसके नाक में जैसे बीन बज रही थी। पिछले कुछ दिनों में दुबली हो जाने के कारण उसका चेहरा कांतिहीन और फीका सा लगने लगा था। प्रमिला की ओर देखते ही उसे गहरी ऊब का भास हुआ। मुझे ज़िंदगी में क्या मिला, उसने मन ही मन कहा, और उसके अंदर आत्म अनुकंपा की लहर सी उठने लगी और गले में कांटे से चुभने लगे। इससे तो बेहतर होगा कि पप्पू को अभी से किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाए। इसके मन पर बुरे प्रभाव तो नहीं पड़ेंगे, घर में तो वह पनप ही नहीं पाएगा। महेंद्र के दिमाग में यह बात कौन सी गई और उसे लगा जैसे उसे कोई रास्ता सूझ गया हो। रिश्ते की औरतों में प्रमिला की चाची को मीठी छुरी का नाम दिया जाता था। चाची मोटी थी, हसमुख थी, पुराने ढंग की थी। चाची सबके पास पहुंचने वाली, सबको मशविरा देने वाली औरत थी। चाची देर तक प्रमिला की बात सुनती रही। प्रमिला की बड़ी बड़ी आँखों में अभी भी बचपना था, भोलापन था, मूर्खता थी। चाची की आँखें धुंधलाई हुई थीं, थकी थकी, पर फिर भी वह सब कुछ देख लेती थीं। थोड़ी देर बाद ही चाची हाथ पसार कर बोली, कोई औरत है जो तेरे मर्द को नचा रही है। फिर अपने पोपले मुंह पर पृष्ठ संख्या 70 हाथ रखकर देर तक सिर हिलाती रही। उसके पैर जाके पकड़, वह जो तेरा घर बर्बाद कर रही है उससे जाकर मिल, उससे इल्तजा कर कि तेरा घर बना रहे। अगर तेरा मर्द उसके पास जाता है तो जाने दे, तेरा घर तो बना रहेगा। जो औरतें समझदार होती हैं वह आंखें मूंद लेती हैं, जो समझदार नहीं होती हैं वह चिल्लाती हैं, रोकती झीकती हैं, बवेला मचाती हैं और अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। मर्द का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। औरत जितनी ज़्यादा चालाक होगी उतनी ज़्यादा अपने हक में और अपने बच्चों के हक में अच्छी होगी। सीधी औरत किसी काम की नहीं होती। सीता माई सीधी थी ना, तिल तिल कर मरी। प्रमिला एकटक चाची के चेहरे की ओर देखे जा रही थी। चाची की बातें सतवंत की बातों से कितनी भिन्न थीं। सतवंत की बातें सुनते हुए दिल में मजबूती आती थी, उत्साह आता था। चाची की बातें सुनते हुए दिल बैठ जाता था, मैंने यह भी गलत किया, वह भी गलत किया, यही भाव उठता रहता था। औरत औरत की दुश्मन होती है, प्रमिला, चाची कहे जा रहे थे। हम सब एक दूसरे को नोचती हैं, जरूर कोई औरत तेरे मर्द को नचा रही है। और उसे अलग होने की पट्टी पढ़ा रही है। तेरा बना बनाया घर औरत ही उजाड़ रही है, मर्द नहीं उजाड़ रहा। मर्द तो भूखा भेड़िया होता है, उसे तो औरत का मांस चाहिए। उसे न बच्चों की परवाह होती है न घर की। घर से उसे बांधे रखना औरत का ही काम होता है। अगर वह इस काम में चूक गई तो अपनी ही कब्र खोदेगी, मर्द का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर चाची, मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? सभी मुझे ही कोसते हैं। तेरा कसूर यह है कि तूने बात बाहर निकाली, रो चिल्लाकर तूने गली मोहल्लों के सामने अपने घर वाले की रुसवाई की। रसे बसे घर को टूटने नहीं दे, नुकसान सरासर तेरा होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। औरत आज़ाद नहीं है, औरत घर से बंधी है। वह अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। औरत का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, जहाँ बैठी है वहीं पर बनी रह। चाची बात कर रही थी जैसे एक दास दूसरे दास के साथ अपने मालिक के बारे में बात करता है। हजारों वर्षों के नारी अनुभव के निष्कर्ष बता रही थी। कुछ होश कर पगली, मर्द के खिलाफ औरत का बस नहीं चल सकता। पृष्ठ संख्या 71। अपना घर नहीं टूटने दे, इस तरह घर टूट जाते हैं और टूटे हुए घर फिर जुड़ते नहीं। तू बेघर हो जाएगी, सिर छिपाने के लिए तुझे ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। अगर भगवान न करे मामला बिगड़ गया तो अपने छोटे से मासूम बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, किसका आसरा लेगी? तेरा पिता आज है तो कल नहीं है, तेरे भाई की बीवी तुझे कितने दिन झेलेगी? 2 दिन, 4 दिन, आखिर वह कहेगी जहाँ से आई वहीं चली जा, हमने तेरा और तेरे बच्चे का ठेका नहीं ले रखा है। प्रमिला अभी भी सांस रोके चाची की बातें सुने जा रही थी। सुन प्रमिला, औरत के पास उसका जिस्म ही जिस्म है और कुछ नहीं। मर्द को रिझाने के लिए कभी औरतें बाल छोटे करवाती फिरती हैं, कभी लंबे, कभी पतलून पहन लेती हैं, कभी तंग सलवारें। मर्दों को उनकी छातियां पसंद हैं, इसीलिए औरतें उन्हें उघाड़ कर दिखाती फिरती हैं। यह तो मर्द की दुनिया है, यहाँ वही होगा जो मर्द चाहता है। उठने से पहले चाची फुसफुसा कर बोली, इससे एक और बच्चा ले ले, पेट में बच्चा होगा तो अलग होने की बात नहीं करेगा। इसके पैरों में गृहस्थ की बेड़ी पड़ जाएगी। हम तो अब एक दूसरे के साथ सोते भी नहीं हैं चाची। तो क्या हुआ, तू उसके बिस्तर में घुस जा, एक बार खदेड़ देगा, 2 बार खदेड़ देगा, आखिर तो मर्द है, औरत के मांस का भूखा है। तू उससे एक और बच्चा ले ले, तेरे सब सवाल हल हो जाएंगे। फिर प्रमिला की ओर टेढ़ी सी नज़र से देखते हुए बोली, बन संवर कर उसके सामने जाया कर, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो तो वह भूखता नहीं, काटता नहीं, हड्डी हटा लो तो भूखने लगता है। चाची ने मुंह पर हाथ रखा और दंतहीन पोपले मुंह से हंस दी, किकियाती सी हंसी। प्रमिला को लगा जैसे मर्दों के प्रति चाची की घृणा शब्दों से कहीं अधिक उसकी किकियाती हंसी में से फूट रही है। फिर चाची अपने दाएं हाथ से प्रमिला के कंधे को ठोका मारती हुई बोली, तेरा चाचा भी कौन सा शरीफ आदमी था, औरत को देखते ही उसके लार टपकने लगती थी, हर आए दिन धमकियां दिया करता था, मैं दूसरी औरत ले आऊँगा, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। मैंने एक एक करके 7 बच्चे ले लिए, अब निकाले कैसे निकालता है? अब खड़ा खड़ा बाएं बाएं करता रहता है। वह एक कहता है, मैं जवाब में 10 सुनाती हूँ इस दुनिया में। पृष्ठ संख्या 72। शरीफ रहकर कोई नहीं जी सकता। और जब चाची दहलीज पार करके घर के बाहर जाने लगी तो भी सीख देती गई। उसे अच्छी अच्छी तरकारियां बनाकर खिलाया कर, उसे खाने का चस्का पड़ गया। तेरे हाथ की रोटी उसे अच्छी लगने लगी तो भी तुझे नहीं छोड़ेगा। मद को काबू करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, धीरज और समझदारी से काम ले। चाची के चले जाने के बाद देर तक प्रमिला का सिर भन्नाता रहा, यह कौन सा तूफान उठ खड़ा हुआ है, यह मुझे कहाँ पर पटकेगा? जो बातें कभी नहीं सुनी थी, जिनका कभी ख्याल भी नहीं आया था, वही आज सुन रही हूँ। किसकी सुनूँ, चाची की या सतवंत की? सतवंत कहती है, डट जा, महेंद्र के बड़े अफसर से शिकायत कर, महेंद्र को धमकी दे, अपने हक मनवा। चाची कहती है, सुषमा के पैर पकड़, घर वाले की चापलूसी कर, डॉट डॉट। मैं किस रास्ते जाऊं? पार्क के बेंच पर बैठा प्रमिला का दूर पार का चाचा इसी नाजुक मसले पर महेंद्र से बात करने आया था। महेंद्र से वह 5-1 साल बड़ा था। और इस नाजुक मामलों के बारे में एक अनुभवी दार्शनिक की भांति बात करता था। मुस्कुरा मुस्कुरा कर धीमे धीमे उंगलियों के पपोटों पर कारण गिनता हुआ, बात बात पर अपनी बौद्धिक निष्पक्षता का हवाला देता हुआ, बौद्धिक निष्पक्षता का भी और आधुनिकता का भी। मैं दकियानूस नहीं हूँ, बल्कि आज की नज़र रखने वाला आदमी हूँ। देश काल के चौखटे में वस्तु स्थिति को देख फरख कर अपना निष्कर्ष देने वाला आदमी हूँ। मैं समझता हूँ विवाह की प्रथा जब ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, उसने दार्शनिक अंदाज में कहा, कोई कारण नहीं कि वह ज़्यादा देर तक टिक पाए। और छोटी उंगली के पपोटे पर अंगूठा रखकर वह कारण गिनाने लगा। अव्वल तो जहाँ औरत भी काम करती हो और मर्द भी, वहाँ आर्थिक निर्भरता खत्म हो जाती है। रह गई बच्चों की बात, उनका पालन सरकार अपने हाथों में ले सकती है, आज नहीं तो कल लेगी। और इस पर उसने हंसकर कहा, अगर बच्चे बोतलों में पैदा होने लगे तो ब्याह और गृहस्थी की ज़रूरत ही कहाँ रह जाएगी। पृष्ठ संख्या 73। इस तथ्य के विश्लेषण के बाद वह गंभीर निष्पक्ष चिंतकों की भांति सिर टेढ़ा करके बोला, लेकिन हमारे यहाँ अभी वह वक्त नहीं आया। शादी की प्रथा अभी कुछ दिन और चलेगी। मतलब कि हमारे सामाजिक जीवन का केंद्र, उसकी मूल इकाई परिवार ही रहेगा। फिर गाल पर हाथ रखे देर तक सामने खड़े पेड़ की ओर देखता रहा, फिर हंसकर बोला, सांप के मुंह में छिपकली, छोड़े तो अंधा, खाए तो मौत। यह है हमारे यहाँ विवाह की स्थिति। महेंद्र की आँखें चाचा के चेहरे पर थीं, हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर भी थी। चाचा की दार्शनिक बातें वह सुने जा रहा था और मन ही मन कहे जा रहा था, साला सीधी बात एक नहीं करेगा, घुमा फिरा कर मुझे समझा रहा है। मैं इसके मुंह पर चाटा भी लगा दूं तो मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि मैं दामाद हूं और यह लड़की का संबंधी है। किसी के मामले में अपनी राय देना कोरा दंभ होता है और कुछ नहीं। हाँ, वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और चाचा ने एक और सिगरेट सुलगाई। दाएं हाथ पर पार्क की एक रविश थी जो फव्वारों के सामने खुलती थी, और बार बार ही इन दोनों की आंखें उस ओर उठ जाती थीं। पार्क में आने वाली स्त्रियों के संग चलती हुई उन स्त्रियों को फव्वारों तक पहुंचाकर ही लौटती थी, जिस कारण इस मामले पर गंभीरता से बात कर पाना कठिन हो रहा था। चाचा यह बात नहीं जानता था कि जिस बेंच पर वह बैठे थे, उसी बेंच पर महेंद्र और सुषमा आकर अंधेरे में बैठा करते थे, और यह सोचकर महेंद्र का दिल बार बार गुदगुदा रहा था। मैं सोचता हूँ, आप जैसे ज़्यादा महसूस करने वाले आदमी को, संवेदनशील आदमी को अपना घर बनाए रखना चाहिए। यदि आपने अलग होने का निश्चय कर लिया तो स्थिति आपके लिए कहीं ज़्यादा बोझल और पेचीदा हो जाएगी। आपके मन पर आज से कहीं ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। साधारण आदमी की बात और है, वह बहुत कुछ के साथ घिसता चला जाता है, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। फिर दाएं हाथ की तर्जनी बाएं हाथ की हथेली पर रख कर कारण गिनाते हुए बोले, सबसे पहले बच्चे से अलहदगी, जिसे आप अपने ढंग से पालना चाहते हैं, और बच्चा भी आपकी तरह जहीन है। दूसरे, आपकी शादी को 12 साल बीत चुके हैं। आदमी आदत का गुलाम होता है। बरसों एक ही ढर्रे पर रह चुकने के बाद यदि वह ढर्रा टूट जाए तो आदमी बहुत ही उखड़ा उखड़ा महसूस करता। पृष्ठ संख्या 74 है। आज का संवेदनशील मनुष्य यों भी अकेला है। ढर्रा टूट जाने से उसका एकाकीपन और भी अधिक असह्य हो जाता है। तीसरे, आपके करियर का सवाल है। अगर आप घर के इस पचड़े में पड़े रहेंगे तो आप काम क्या कर सकेंगे? आपके सामने तो इतना उज्जवल भविष्य है, प्रतिभा के सामने संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं, परंतु उसे खुलकर खेलने का मौका तो मिले। औरतों के मामले में इंसान उलझा नहीं कि जवानी के बरसों बर्बाद हुए नहीं। वह ब्रह्मास्त्र चला चुकने के बाद चाचा जी आश्वस्त महसूस करने लगे और महेंद्र के घुटने को हल्के से थपथपा कर बोले, मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो सेक्स को पाप मानते हैं। सेक्स का सवाल अलग है और गृहस्थी बनाए रखने का सवाल अलग। फिर बेंच की पीठ के साथ पीठ पीठ लगाकर सिगरेट का एक लंबा कश लेकर वह धीरे से बोले, साफ बात है, हर मर्द की औरत किसी न किसी वक्त बासी पड़ जाती है या उससे ऊब उठता है। कुदरती बात है, ऐसा युगों युगों से चला आया है और चलता रहेगा। पर गृहस्थी तोड़ने या बनाए रखने की बात अलग है। महेंद्र ने देखा, चाचा जी अपनी सुसंस्कृत शब्दावली में वही कुछ कह रहे थे जो नाटा टुच्चों की भाषा में कहा करता था। फिर चाचा जी मुस्कुराए, सिर टेढ़ा किए, दो हथेलियाँ चौड़ी की, मानो अब किसी और तथ्य का गला घोटने जा रहे हों, और बोले, प्रमिला की त्रुटियों को मैं जानता हूँ। वह पैसिव है। वह इस बात को नहीं समझती कि दूसरा आदमी उससे क्या चाहता है। वह वक्त की नज़ाकत को नहीं समझती। लगभग 2 घंटे की बैठक के बाद चाचा जी ने अपनी वाक्पटुता और निष्पक्षता के बल पर इस बात का आश्वासन महेंद्र से ले लिया कि वह कोई भी कदम उठाने से पहले जरूर संजीदगी से गौर करेंगे और उन्हें बताए बिना कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पार्क में से निकलकर महेंद्र ने तो सीधी सुषमा के फ्लैट की ओर राह ली और चाचा जी पैर घसीटते हुए इस आश्वासन के साथ कि चलो, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, आगे वह जाने और उनका काम, पार्क में से निकलकर दाएं हाथ एक पान की दुकान पर पहुंचे और वहां खड़े होकर उन्होंने सिगरेटों की डिबिया ली, एक दिया सलाइयों की डिबिया भी ली। फिर चलते हुए पार्क के दूसरे सिरे तक जा पहुंचे और वहां से वह लौट कर धीरे धीरे कदम उठाते हुए फिर पार्क के गेट की ओर आने लगे। अब तक तो महेंद्र दूर पहुंच चुका होगा, वह बुदबुदाए। तय तो यही हुआ था कि जो पहले पहुंचे दूसरे का इंतजार करें। 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। पृष्ठ संख्या 75। वह पार्क के गेट तक पहुंचे ही थे जब सड़क की ओर से सरसराती साड़ी में लिपटी उनकी एक परिचिता चली आई। उन्होंने आगे बढ़कर गेट का घूमता चक्र परिचिता के लिए रोक दिया और दोनों एक साथ हंस दिए। चाचा जी ने तर्जनी अपनी कनपट्टी पर रखते हुए कहा, इस खोपड़ी के अंदर घड़ी लगी है, 1 मिनट भी कभी देर सवेर नहीं हो सकती। और परिचिता ने गहराती शाम में काला चश्मा आंखों पर से उतारते हुए अपने सफ़ेद मजबूत दांतों की लड़ी दिखाते हुए कहा, मैं जानबूझकर 10 मिनट देर आई हूँ, मैं जानती थी तुम्हारी बहस लंबी होगी। तभी हंसकर बोली, कहो, घर बसेगा या टूटेगा? चलो किसी रेस्तरा में चलें, यहाँ बैठने को अब मन नहीं कर रहा। बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। तुम तो मेरे साथ रेस्तरा में बैठने से कतराते थे। और दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक रेस्तरा की ओर जाने लगे।